तभी आरवी ने अयांश को पीछे धकेल दिया और हाथ बांधते हुए बोली, चार क्यों, आठ पीकर आइएगा। मुझे क्या, दिमाग खराब तो है ही, आपका लिवर और हो जाएगा। या तुमको क्या, पियक्कड़ हूँ मैं और तुम्हारा पियक्कड़ पति पिए बिना नहीं रह सकता। रोज पीता है ना, तो मैं पीकर आता हूँ, तुम संभाल लेना, ओके बाय। इतना कहे अयांश बाहर की ओर चला गया। आरवी उसे जाते देख पीछे से आवाज देते हुए बोली, हाँ हाँ संभाल लूंगी, जो कोर्ट में बोला था ना मैंने कि शराब पीकर मेरा पति मुझे पीटता है, यहाँ उसका उल्टा होगा, वो भी बिना मेरे शराब पिए, गुस्से से चिल्लाते हुए। ये सुन सब हंस पड़े। सबको हंसते देख आरवी ने सबकी ओर घूर कर देखा तो सब हंसी रोक इधर उधर देखने लगे। तब आरवी कमर से हाथ टिकाते हुए बोली, हंस लीजिए ना, बड़ी हंसी आ रही है सबको, हमारे ही मजाक ने हमारी जिंदगी को मजाक बनाकर रख दिया है। तभी विनित बोला, डोंट वरी आरवी, मैं ध्यान रखूंगा, अयांश ज्यादा ना पिए, आदत छूट जाएगी, थोड़ा वक्त दो, मंद मंद हंसते हुए। विनित जी आप भी रुके जरा, कहते आरवी विनित की ओर आने लगी कि विनित बाहर की ओर भाग गया। अयांश बुला रहा है मुझे, बाय आरवी, बाद में मिलता हूँ। नहीं मिलना मुझे आपसे, कहे आरवी आकर सोफे पर पलथी लगाकर बैठ गई। उसका फूला हुआ मुंह देख दिनकर जी, अभी, राधे एक दूसरे की ओर देखने लगे। विनित बाहर भागा, अयांश गाड़ी में बैठा था, विनित हंसते हुए गाड़ी में आ बैठा। ये आरवी भी ना हद करती है, वैसे तुमने उसकी हर बात क्यों मानी, जानते हो ना उसने जो कहा, उसकी हर बात का मतलब जो चाहती है उसका उल्टा होगा। उसने साफ साफ ना कह दिए कि वो कुछ नहीं करेगी जैसा जज साहब ने कहा है, और तुम सच में उसके यहाँ रहने के, खाने पीने के उससे पैसे लोगे, अयांश की ओर देखते हुए। अयांश सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, वो अब यहाँ रह रही है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है, फिर चाहे जैसे भी रहे। ये सुन विनित हंस दिया और अयांश की बात थपथपाते हुए बोला, सही है, आरवी का होना जरूरी है, बाकी बातें इतनी भी जरूरी नहीं। और अयांश मेहरा का फेवरेट चेहरा अब रोज सामने होगा, जिसे जब मर्जी जितना मर्जी देख लो, है ना, भौहें उचकाते हुए। विनित की इस बात पर अयांश थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, हालांकि उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो आज कितना खुश था। उसे यूं मुस्कुराता देख विनित ने उसे फट से हक कर लिया, क्योंकि अयांश के यूं खुश दिखने वाले पल बहुत कम होते थे। विनित को अपने गले लगे देख अयांश ने फट से उसे खुद से दूर किया और डांटते हुए बोला, प्रॉब्लम क्या है, जब देखो तब चिपकते रहते हो, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है ये सब तुम्हारा आजकल। विनित अपनी सीट पर सही से बैठते हुए बोला, इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा, और अगर मेरी जगह आरवी होती तब भी ऐसे ही अपने कपड़ों की परवाह करते क्या, अयांश को अपना कोट सही करते देख, बताओ जरा। ये सुन अयांश के हाथ रुक गए, जो कोट की बाजू पर फेर रहा था। तभी विनित फिर बोला, नहीं हुआ खराब इतना भी, देख लूंगा जब आरवी मेरी जगह होगी, तब कितना ज्यादा होगा और कितनी कपड़ों की फिक्र होगी, अयांश को छेड़ते हुए। अयांश उसे घूरते हुए बोला, शट अप और सीट बेल्ट लगाओ। विनित सीट बेल्ट लगाकर बोला, लगा लिया, अब चलो। अयांश ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों घर से ऑफिस के लिए निकल गए। अयांश सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था, जबकि विनित अपनी ही बोली बातों पर बाहर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आरवी सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी, दिनकर जी उसके पास आकर बैठ गए, राधे अभी भी चले आए। दिनकर जी आरवी के सिर पर हाथ रख बोले, क्या हुआ बेटा। आरवी मुंह बनाते हुए बोली, देखा ना आपने अपने पोते को, इसीलिए हम नहीं आना चाहते थे कभी यहाँ, वो कितना परेशान करता है, अब रोज हमें परेशान करेगा। दिनकर जी मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हुआ, हम कम थोड़ी हैं, परेशान करेगा तो हम दुगना परेशान कर देंगे। ये सुन आरवी ने टेढ़ी नजरों से दिनकर जी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग गई। ये हुई ना बात दादाजी, दूर होते हुए, आप ना बहुत अच्छे हो, हम मिस्टर मेहरा के साथ नहीं, आपके और आधे भैया के साथ रहने आए हैं, आप दोनों बहुत अच्छे हो, अभी को भी साथ ले आए, आप दोनों भी हैं यहाँ, बस हमारे अगले 6 महीने आराम से और बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे, खुश होते हुए। ये सुन तीनों मुस्कुरा दिए तो आरवी दिनकर जी से बोली, आप हमारी साइड रहेंगे ना या सिर्फ आपके पोते की सुनेंगे। दिनकर जी ने राधे की तरफ देखा तो राधे हंसते हुए बोला, आप तो फंसा रही हैं मालिक को, ये अयांश बाबा का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और अब आपसे भी बहुत प्यार करते हैं मालिक, आप मालिक को बहुत अच्छी लगती हैं, अयांश बाबा के जैसे ही। ये सुन आरवी फिर बोली, हमें ये नहीं पता कौन कितना अच्छा लगता है, किससे कितना प्यार करते हैं, हमें तो बस हमारे सवाल का जवाब दीजिए, और आप बोलिए दादाजी। तभी दिनकर जी ने प्यार से आरवी के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, दोनों साइड खुश। इस बात पर आरवी मुस्कुरा दी, बहुत स्मार्ट हैं आप, वैसे एक बात बोलूं, अयांश के बारे में सोचते हुए, मिस्टर मेहरा ने जो मेरे साथ किया, मुझे डराने के लिए, यहाँ कैदी सासा रखने के लिए, घर की तरफ देखते हुए, मेरे साथ बहुत बुरा बिहेवियर, गुस्से में बहुत बुरा रिएक्ट, वो भी किस लिए, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए, गलतफहमी की वजह से नफरत करते थे वो मुझसे, ये सच है, पर जो बुरा बर्ताव किया उसकी वजह थी मैं उनके खिलाफ ना जाऊं, बस उनकी हर बात मान लो। उस सब के लिए उन्होंने वो सब किया जो अच्छा तो था नहीं, बट हाँ जितने बुरे वो बने उतने बुरे हैं नहीं। ये बोल आरवी ने जैसे ही तीनों की तरफ देखा तो तीनों आरवी को एक टक देख रहे थे। तभी आरवी समझ गई कि माजरा क्या है और फट से बोल पड़ी, हेलो, आप सब किसी और पटरी पर मत चढ़ जाना। मैं तारीफ नहीं कर रही मिस्टर मेहरा की, मैं बस ये कह रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया मुझे काबू में रखने के लिए, पर जितना बुरा उन्होंने खुद को दिखाया उतने बुरे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है, बुरे नहीं है। अच्छा नहीं कहा मैंने उनको, बेशक वो बुरे नहीं हो सकते, वो पर अच्छे भी नहीं है और मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तो डेविल कुमार ना ही उनकी अकड़, कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे उनमें, बुराई नहीं माना पर अच्छाई भी नहीं, तो खबरदार जो मेरी बातों का किसी ने गलत मतलब निकाला। ये सुन तीनों ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया। ये देख आरवी हंस पड़ी, अच्छा राधे भैया चाय पिला दीजिए आपके हाथ की। राधे वहां से जाते हुए बोला, अभी लाए। आरवी अभी से बोली, बैठो ना, खड़े क्यों हो। दिनकर जी बोले, हाँ बेटा बैठो। आरवी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बैठो, मेरी तो ये ससुराल सिर्फ 6 महीने के लिए है, तेरी तो लाइफ टाइम रहने वाली है। वर्तिका इनकी, दिनकर जी की ओर हाथ से इशारा करते हुए, पोती है, दो दो मायके हैं उसके, पता है ना, तो हक से बैठो, आराम से बैठो। ये सुन दिनकर जी और अभी हंस पड़े। उनको हंसते देख आरवी भी खिलखिलाकर हंसती। उसे हंसता देख दिनकर जी खुश होते हुए उसे देख अपने घर की ओर देखते हुए मन ही मन बोले, लौट ही आई मेरे घर आंगन और मेरे अंशु की जिंदगी में खुशियां। अयांश विनित के साथ ऑफिस पहुंचा। उसे आते देख सब अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। उसे और विनित को सब गुड इवनिंग सर कहने लगे। अयांश तेजी से आगे बढ़ रहा था, हालांकि उसने ध्यान किसी पर नहीं दिया, जबकि विनित उसके साथ चलते हुए सबके गुड इवनिंग का मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। तभी अचानक एक एम्प्लॉई अयांश से अटक आया। उसके हाथ में जो फाइल्स थी वो अयांश के कदमों में जा गिरी। अयांश के कदम वहीं रुक गए। अयांश के तो कदम ही रुके, वहां मौजूद सबकी तो मानो सांसें ही रुक गई। सब एक दूसरे की ओर देखते हुए अयांश की ओर देख रहे थे, जो अपने सामने खड़े एम्प्लॉई को देख रहा था, जो अयांश के सामने डर के मारे फट से अपनी नजरें झुका लेता है और दो कदम पीछे होकर लड़खड़ाती जुबान में बोला, सॉरी सर। आगे वो कुछ कहता कि तभी अयांश नीचे पड़ी फाइल को देखता है और विनीत की ओर देखते हुए बोला, उठाओ।
इतना कहते ही विनीत ने फट से नीचे पड़ी चारों फाइलें उठा ली। अयांश ने विनीत के हाथ से फाइल ली और सामने खड़े उस एम्प्लॉई की ओर बढ़ाई, जिसकी अब मेरा क्या होगा सोच हालत खराब होती जा रही थी और उसके साथ साथ बाकी सब भी परेशान हो रहे थे। सोच सोच कर कि हो गया स्यापा, देखने को मिलेगा बॉस का गुस्सा। पर तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब अयांश उस एम्प्लॉई से गुस्से की बजाय नरमी से बोला, देख कर चलो वरना चोट लग सकती है, और जो काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो, सब ठीक रहेगा, चीजें भी और खुद भी। ये सुन एम्प्लॉई ने फट से फाइल्स पकड़ी और चुपचाप साइड में हो गया। अयांश विनीत की ओर देखते हुए बोला, तरुण वर्तिका के साथ जल्द मेरे कैबिन में आओ। क्रमशः